हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेदांत भी जब डिनर करके विहा के लिए डिनर प्लेट लेकर कमरे में आया तो उसने देखा कि विहा पहले से सोफे पर लेटी हुई थी और खुद को पूरी तरीके से कम्फर्टर से ढक कर रखा था। वेदांत ने सिर्फ सर हिलाते हुए अफसोस भरी गहरी सांस छोड़ी और फिर तेज कदमों से उसके पास जाकर अपने हाथ में पड़ी टेबल पर रखते हुए बोला, विहा बेटा, खाना खाए बिना नहीं सोने दूंगा मैं, चाहे खुद को कितना ही ढक लो। चलो उठो, अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ, उसके बाद सो जाना। पर जैसे विहा के कानों में कोई आवाज ही न गई हो, उसके शरीर में जरा सी भी हरकत नहीं हुई थी, जिसे देखकर वेदांत की आंखें छोटी हो गईं। वो इस बार और भी ज्यादा सख्ती से बोला, मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, उठो टोमैटो, खाना खाओ। इस बार भी सामने से बस खामोशी ही जवाब में मिली तो वेदांत ने एक झटके से उसके शरीर से कम्फर्टर उठाया, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि विहा की पूरी बॉडी एकदम लाल हो रखी थी, पता नहीं क्यों, और वो ठंड से कांप रही थी, जिसे देखकर वेदांत के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। वो जल्दी से उसके पास बैठा और उसके फोरहेड को चेक करते हुए बोला, टोमैटो, क्या हुआ है तुम्हें? विहा का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था कि वेदांत को दो सेकंड बाद ही अपनी हथेली पर जलन महसूस हो रही थी। वो जल्दी से विहा को सीधा बैठाते हुए उसके सर के पीछे अपने हाथ का सपोर्ट बनाते हुए बोला, उठो, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। विहा ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर वेदांत के चेहरे को देखा और फिर अपने कांपते होठों से बोली, मुझे ठंड लग रही है वेदांत, प्लीज मुझे सोने दो। उसकी आंखें भी सुर्ख थीं। वेदांत ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठाया और बेड पर ले जाते हुए बोला, तो तुम सोफे पर क्यों सो रही हो, यहाँ सो जाओ। उसके बाद उसने जल्दी से अपना कम्फर्टर उसे ओढ़ाते हुए रूम की एसी को बंद किया और हीटर ऑन करते हुए बोला, डोंट वरी, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वेदांत खुद बुरी तरह घबरा रहा था। उसने अपना फ़ोन पकड़ा तो उससे कॉल लॉक्स भी ओपन नहीं हो रहे थे। उसकी उंगलियाँ थरथरा रही थीं। उसके बावजूद उसने मुश्किल से डॉक्टर को कॉल लगा ही दिया। सामने से डॉक्टर ने 5 मिनट में आने का कहा और वेदांत ने अपना फ़ोन वहीं टेबल पर फेंकते हुए विहा के करीब बैठकर उसकी छोटी सी हथेली अपने दोनों मजबूत हाथों में थामते हुए उन्हें आपस में रगड़कर कहा, बच्चा, इतनी जल्दी कैसे फीवर आ गया तुम्हें? थोड़ी देर पहले तो मैं तुम्हें सही सलामत छोड़कर गया था। वेदांत का शायद आज तक किसी ओवरथिंकर से पाला नहीं पड़ा था। एक इंसान सिर्फ अपनी सोच से अपनी तबीयत किस हद तक बिगाड़ सकता है, ये उसे अंदाज़ा नहीं था। विहा बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, वेदांत से लड़ना भी चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो बस फुसफुसा कर रह गई और उसका कहा एक भी शब्द वेदांत को समझ नहीं आया। वेदांत ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपने गर्म हाथ को उसके छोटे से चेहरे पर फेरते हुए कहा, कहीं तुम ठंडे पानी से तो नहीं नहाकर आई हो, या फिर बारिश में भीगी थी? क्या हो गया है यार, मेरा दिल घबरा रहा है। वेदांत का चेहरा देखकर पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितनी परेशानी में है, क्योंकि आज तक उसने ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था जिसमें उसने किसी बीमार आदमी की केयर की हो। उसे तो ये भी नहीं पता था कि सामने वाला फील कैसा कर रहा है। विहा ने अपना हाथ उससे अलग करते हुए करवट बदल ली, जिससे वेदांत परेशान होते हुए बेड की दूसरी तरफ जाकर बोला, तुम्हें क्या चाहिए? विहा ने आंखें खोलकर कहा, मुझे शांति चाहिए, आप यहाँ से जा सकते हैं, या फिर आप भी सो जाइए। अगर आपको बेड पर सोना है तो मैं सोफे पर सो जाऊंगी, पर मुझे बस सोना है। विहा चिड़चिड़ा बिहेव कर रही थी, वहीं वेदांत बस प्रे कर रहा था डॉक्टर के जल्दी आने की, और कुछ ही पल में उसका इंतजार खत्म हो गया जब दरवाजे पर नॉक हुआ। वेदांत तेज कदमों से दरवाजे के पास गया और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक फीमेल डॉक्टर अपने हाथ में पकड़ी सूटकेस के साथ अंदर आई। वो जल्दी से बेड के पास आते हुए बोली, आपकी वाइफ है ना ये? वेदांत ने हल्के गुस्से में कहा, आपको रिश्ते पूछने हैं, इनका इलाज करिए। क्या हुआ है इसे? थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने कहा, आप थोड़ी देर बाहर रहिए, मैं देखती हूँ इन्हें क्या हुआ है। वेदांत हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही डॉक्टर ने विहा को एग्जामिन करना शुरू कर दिया, तो विहा ने डरते हुए कहा, प्लीज डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन मत लगाना। डॉक्टर ने उसकी बॉडी टेम्परेचर को चेक करते हुए कहा, तुम्हारा बुखार इतना ज्यादा है कि मैं चाह कर भी तुम्हें इंजेक्शन तो दे ही नहीं सकती हूँ। तुमने खाना खाया? अगर खाना खा लिया है तो टैबलेट दे सकती हूँ, जिसके वजह से तुम्हारा बुखार जल्द ही उतर जाएगा। विहा ने धीरे से ना में सर हिलाया तो डॉक्टर बाहर जाने लगी, लेकिन उसने टेबल पर रखी खाने की प्लेट देखी तो वो खाने को उठाकर उसके पास लाते हुए बोली, चलो खाना यहीं रखा हुआ है, बस थोड़ा सा खा लो, उसके बाद तुम्हें टैबलेट देती हूँ। डॉक्टर ने जबरदस्ती ही विहा को आधी चपाती खिलाई और उसके बाद उसे दवाई देते हुए बोली, इसका असर अगले 15 मिनट में हो जाएगा। विहा ने बस हाँ में सर हिलाया और डॉक्टर ने एक चैन की सांस ली। दवाई लेकर विहा वापस सो चुकी थी तो वहीं वेदांत बेचैनी से कमरे के बाहर इधर उधर टहल रहा था। डॉक्टर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, वेदांत ने घबराते हुए कहा, मेरी वाइफ ठीक तो है ना, क्या हुआ है इसे? डॉक्टर ने कहा, सर नॉर्मल फीवर है, वैसा कुछ नहीं हुआ है। फीवर के कई रीजन हो सकते हैं, मैंने अब उनको टैबलेट दे दी है, जल्द ही उन्हें आराम आ जाएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी काफी रात हो गई है, आपको सो जाना चाहिए। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। वेदांत ने अंदर जाकर सबसे पहले घड़ी में टाइम देखा, जो रात के 11 बजाने का इशारा कर रही थी। वेदांत धीमे कदमों से बेड के पास गया और विहा का सर सहलाते हुए बोला, टोमैटो तुम अब कैसा फील कर रही हो? पर विहा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो सो चुकी थी। थक कर वेदांत भी बेड पर उसके करीब लेटकर सो गया। कुछ पलों में उसे विहा के छोटे छोटे हाथ अपनी कमर पर महसूस हुए, जिससे वेदांत ने आंखें बली किए विहा की तरफ देखा, जो उसे पिलो समझकर उससे लिपट चुकी थी। वेदांत ने अपनी सांस रोककर विहा का हाथ खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन विहा ने उसे और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। वेदांत ने अफसोस भरी सांस लेते हुए फिर विहा को डिस्टर्ब नहीं किया और खुद भी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह विहा को अपनी गर्दन पर किसी तेज चुभन का एहसास हो रहा था। ना चाहते हुए भी उसे अपनी आंखें खोलकर देखना पड़ा और जैसे ही उसने वेदांत की सोंधी सी खुशबू को अपने इतने करीब महसूस किया, पल भर के लिए उसका दिल जैसे धड़कन ही भूल गया। उसने आंखें बड़ी किए तिरछी नजरों से देखा तो वेदांत उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए सो रहा था, जिस वजह से उसे वेदांत की बियर्ड चुभ रही थी। पहले तो विहा को वेदांत पर तेज गुस्सा आया कि वेदांत उसके इतने करीब कैसे सो सकता है, लेकिन कुछ पल में उसे हैरानी हुई कि वो खुद भी वेदांत को अपनी दोनों पैरों से जकड़े हुए थी।
वेदांत को ना चाहते हुए भी उसके करीब आना ही पड़ा। विहा ने शर्म के मारे अपने होंठ काट लिए। उसके बाद वेदांत को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और उसकी इन कोशिशों से जल्द ही वेदांत की भी नींद टूट गई। उसने आंखें खोलकर विहा को देखा और फिर नींद भरी आवाज में कहा, टोमेटो तुमने मुझे पूरी रात परेशान किया है, प्लीज अभी तो सोने दो, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? इतना बोलकर उसने विहा को और भी ज्यादा अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके लिए बिल्कुल किसी फोम के टुकड़े की तरह थी। वो उसे जितना कसता चला जा रहा था उसे उतना सुकून मिल रहा था और लग रहा था किसी भी पल विहा उसके सीने के अंदर ही समा जाएगी। उसके इस नरमाहट को वेदांत चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था। हाँ, वो अलग बात थी कि ये सब कुछ वो अनजाने में कर रहा था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था इसके पीछे।